हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 113। हर्षिता ऑडिशन रूम में आई। उसने देखा कि वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ स्क्रीन के सामने एक आदमी बैठा था। उसके आसपास 3-4 लोग और थे। स्टाफ की 2-3 लड़कियाँ भी नजर आईं। ये कंपनी उसके मामा जी और उसकी दीदी शिविका की थी, पर फिर भी वो यहाँ पहली बार आई थी। वो मॉडल के लिए ऑडिशन देने आई थी, इसलिए वो बहुत नर्वस थी। अपनी घबराहट को मॉडल फेस लुक के नीचे छुपाते हुए हर्षिता ने एक गहरी सांस ली और ऑडिशन देने के लिए स्टेज की तरफ बढ़ी। स्टेज पर पहुंचने से पहले उसे ज्वेलरी में एक ब्रेसलेट दिया गया। शायद ये SK डिजाइनिंग हाउस का ही डिजाइन किया हुआ ज्वेलरी पीस था। उसे देखकर हर्षिता ने पूछा, इसका क्या करना है? डायरेक्टर की असिस्टेंट ने समझाते हुए कहा, आपको पता ही होगा कि ये इवेंट हमारी पूरी ज्वेलरी शोकेस करने के लिए है। आपको ये ब्रेसलेट इस तरह से कैरी करना होगा कि आपकी वॉक में सबका ध्यान इस ब्रेसलेट पर ही रहे। असिस्टेंट ने हर्षिता को पूरी बात समझाई और ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाकर वहां से चली गई। जाते हुए उसने हर्षिता को सेंटर की तरफ जाने का इशारा किया। ये बात हर्षिता के लिए बिल्कुल नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि इतने छोटे से ज्वेलरी पीस को वो कैसे शोकेस करेगी। फिर भी वो रैंप पर गई और अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए आगे बढ़ी। कुछ सोचते हुए उसने अपने बाल, जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, खोल लिए। आगे चलते हुए उसने अपने ब्रेसलेट वाले हाथ से कई बार अपने बालों को पीछे किया और हाथ को 2-3 बार इधर उधर मूव किया, एक बार अपने चेहरे तक भी ले गई। इससे वो चमकता हुआ ब्रेसलेट सामने बैठे लोगों को नजर आया। वे हर्षिता के आइडिया से काफी इम्प्रेस नजर आ रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे। कुछ 2-3 मिनट डिस्कस करने के बाद उन्होंने हर्षिता को वेटिंग रूम में जाकर बैठने के लिए कहा। हर्षिता वेटिंग रूम में चली गई। उसने देखा कि वहां उसकी ही तरह 2-3 लड़कियां और बैठी हुई थीं। उन लड़कियों ने भी हर्षिता की तरह ही कोई ना कोई ज्वेलरी पहन रखी थी। किसी ने कान में इयररिंग पहने थे तो किसी के गले में लॉकेट था और किसी ने रिंग पहनी हुई थी। वहां आने से पहले जजों के एक्सप्रेशन से हर्षिता को ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया कि वो सिलेक्ट होगी या नहीं, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर दिया जो ओवर लग रहा हो और इस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। वही स्टाफ मेंबर जो थोड़ी देर पहले हर्षिता को ऑडिशन के लिए बुलाकर स्टूडियो में ले आई थी ने उसे नाम लेकर बुलाया। अरे लड़की, चलो, इवेंट मैनेजर और डायरेक्टर सर तुमसे बात करना चाहते हैं। दरवाजे की तरफ से स्टाफ गर्ल की बात सुनकर हर्षिता एकदम एक्साइटेड हो गई। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ आते हुए बोली, क्या सच में उन्होंने मुझे फिर से बुलाया? इसका मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या सच में उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया? स्टाफ गर्ल ने फिर से रूड भी कहा, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम्हें बुला कर लाने के लिए कहा गया है। चलो, बाकी सब तुम्हें वहां पर खुद ही पता चलेगा। दरवाजे की तरफ आते हुए हर्षिता बोली, तो इसमें इतना रूड बनने की क्या जरूरत है? आप नॉर्मल भी तो मुझे ये बात बोल सकती हैं। वो स्टाफ गर्ल थोड़ा गुस्सा करती हुई बोली, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, कम बात करो और अपने काम से काम रखो। उसके इतना कहने के बाद हर्षिता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे पीछे वहां से निकलकर स्टूडियो की तरफ आ गई। दूसरी तरफ साहिल ने शिविका के साथ उस जगह पर जाने के लिए कहा जहां उनका इवेंट होने वाला था। वो पूरा साइट व्यू देखना चाहता था। असल में उसे ऐसा कुछ भी नहीं देखना था, वो बस शिविका के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए ये बहाना कर रहा था। ये सब करण को समझ आ रहा था, लेकिन शिविका को प्रोफेशनल रिलेशन की वजह से उसकी सारी बातें माननी पड़ रही थीं। ये कोई पहली बार नहीं था जब कोई क्लाइंट इस तरह की उठपटांग डिमांड कर रहा हो। ज्यादातर क्लाइंट इस तरह की मांग करते हैं। शिविका ने वहां पर अब तक का हुआ सारा वर्क प्रोग्रेस उसे दिखाते हुए कहा, सो मिस्टर साहिल, क्या हुआ? ये सब कैसा लगा? आपको पसंद आया या नहीं? शिविका के सवाल पर साहिल बहुत ही ज्यादा फ्रैंक होते हुए बोला, अरे, आपकी पसंद का सब कुछ है तो भला हमें कैसे नहीं पसंद आएगा? सब अच्छी तरह से है, लेकिन मुझे लगता है कि काम थोड़ा स्लो है। टाइम पर पूरा तो हो जाएगा ना? शिविका ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, कुछ भी स्लो नहीं है, सारी तैयारियां सब कुछ टाइम पर है। ये डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, दूसरी तरफ मॉडल्स भी सिलेक्ट हो गई हैं, और ज्वेलरी डिजाइन तो पहले ही कंप्लीट हैं, और क्या बाकी रह गया है? साहिल ने बहुत ही ज्यादा चापलूसी करते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आप पर भरोसा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो हमारा इवेंट, और इसकी चर्चा शहर के कोने कोने तक होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। जो भी VIP गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं, उन सभी को आपकी ज्वेलरी में से कुछ ना कुछ तो पसंद आना ही चाहिए। उसकी ऐसी चापलूसी भरी बातें करण और शिविका दोनों को पसंद नहीं आ रही थीं। फिर भी शिविका ने उसकी बात का बड़े ही आराम से जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। मुझे भी पता है, ये सब आखिर हमारा ज्वेलरी ब्रांड है, तो मैं इतना तो ध्यान रखूंगी ही ना, ये भी कोई कहने की बात है। शिविका की ये बात सुनकर साहिल बहुत ही नरमी से तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोला, I am sorry, बट मैं तो सिर्फ सजेशन दे रहा था, और मुझे पता है आप हमसे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। आखिर इसीलिए तो इस बार सबसे बेस्ट और सक्सेसफुल CEO का अवार्ड भी आपको ही मिला है, लेकिन उसकी पार्टी में तो आपने हमें इन्वाइट ही नहीं किया था। उस पार्टी का जिक्र होते ही शिविका को याद आ गया कि उस दिन वो पहली बार करण से मिली थी। उस पार्टी को आज लगभग 5 महीने होने वाले थे। तब उसे कहां पता था कि करण उसकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ये सब याद करते हुए वो मुस्कुरा रही थी। तभी साहिल ने कहा, क्या हुआ? वैसे खुशी की बात तो है ही, लेकिन मैंने साथ ही कुछ पूछा भी है आपसे। उसके इस तरह दोबारा सवाल पूछने पर शिविका ने एकदम सीधा जवाब दिया, अरे मिस्टर साहिल, तब मैं आपको जानती नहीं थी तो कैसे इनवाइट करती, बट नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई भी पार्टी या फंक्शन होगा तो डेफिनेटली मैं आपका नाम याद रखूंगी गेस्ट लिस्ट में। साहिल ने थोड़ा ज्यादा मुस्कुराते हुए कहा, ओके, आई एम ग्लैड टू नो अबाउट इट। शिविका की तरफ देखते हुए साहिल का बार बार इस तरह से मुस्कुराना करण को जहर लग रहा था, इसलिए इस बार उसने बीच में बोलते हुए पूछ ही लिया, सो सर, अब आपको पूरी तसल्ली हो गई या फिर अभी और कुछ भी बाकी है? मेरा मतलब है, आपको कुछ और भी देखना हो, चेक करना हो तो आप बता सकते हैं, मैं अरेंज करवा दूंगा। साहिल को करण का इस तरह से बीच में बोलना बिल्कुल भी नहीं भाया, लेकिन करण ने एकदम प्रोफेशनली सवाल पूछा था तो साहिल को भी उसी तरह से जवाब देना पड़ा, नहीं नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं देखना, एक्चुअली ये मेरे लिए प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस इसीलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, लेकिन अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई है क्योंकि मुझे शिविका पर पूरा भरोसा है और वो सब कुछ काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। उसकी पूरी बात सुनकर आखिर में शिविका बोली, ओके, तो अब मैं जाऊँ, मुझे और भी काम है, अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो आप रुक सकते हैं। साहिल ने नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर रुककर क्या करूँगा, चलिए साथ ही चलते हैं, और अगर कोई ज्यादा जरूरी काम ना हो तो क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पी सकती हैं?
ये सवाल सुनकर शिविका बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन में पड़ गई। वो बिल्कुल भी उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी। वो समझ रही थी कि करण को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए उसने करण की तरफ देखा। करण ने उसे मना करने के लिए इशारा किया। वो उसका इशारा समझ गई, इसलिए तुरंत ही बहाना बनाते हुए बोली, आई विल प्रेफर इट नेक्स्ट टाइम, बट नाउ आई हैव टू गो, और थोड़ा जरूरी काम है। साहिल ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, जरूरी काम है तो मैं भी समझता हूँ कि कोई काम होगा, नहीं तो आप हमें मना तो नहीं करेंगी ना? कोई बात नहीं, अगली बार ही सही, लेकिन आपकी रहेगी मुझ पर। शिविका ने भी ठीक उसी तरह से जवाब दिया, ओके श्योर। इतना बोलने के बाद उसने करण की तरफ देखा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। साहिल को उसकी असिस्टेंट सोनिया के साथ वहां छोड़कर करण और शिविका एक साथ वहां से एग्जिट डोर की तरफ बढ़ गए। साहिल बेबसी से वहां अकेला खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था जब तक कि वे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। उसे इस तरह से देखकर सोनिया आगे आती हुई बोली, सर, मुझे नहीं लगता कि आपका प्लान काम करेगा। उसकी बात सुनकर साहिल ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली और फिर सोनिया को लगभग डांटते हुए बोला, हमेशा ही नेगेटिव बातें करना जरूरी है क्या? और वैसे भी मैंने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा, सो जस्ट शट योर माउथ। ये सुनकर सोनिया एकदम चुप हो गई और उसने आगे कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ शिविका की कार में आज शिविका और करण के साथ ड्राइवर नहीं आया था, इसलिए शिविका कार ड्राइव कर रही थी और करण चुपचाप मुंह बनाकर उसके साथ वाली पैसेंजर सीट में बैठा हुआ था। इतनी देर की ड्राइव में अब तक उसने कुछ भी नहीं बोला था। शिविका समझ गई थी कि वो किसी बात को लेकर नाराज है। शिविका ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इसीलिए उसने भी अब तक कुछ भी नहीं बोला था। उसकी इस साइलेंट ट्रीटमेंट पर करण को लगा था कि शिविका उसके चुप रहने की वजह तो पूछेगी, लेकिन उसने नहीं पूछा। तो करण थोड़ा सा चिढ़कर बोला, तुम्हें ये साहिल कुछ ज्यादा ही पसंद है ना? वैसे भी मानो या ना मानो, लेकिन आप उसका इतना अच्छा दोस्त भी बन गई हो। करण के इस तरह अचानक से बोलने पर शिविका ने मना करते हुए कहा, अरे एकदम अचानक से ये बात क्यों? क्रमशः